ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉस्को में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सहअध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी दृष्टिकोण साझा करेंगे। दोनों नेता ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे समूहों में द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति का भी आकलन करेंगे। श्री मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मॉस्को पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस में भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगे। वे क्रेमलिन में सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और मॉस्को में प्रदर्शनी स्थल पर रोसाटोम पवेलियन का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तिरुवनंतपुरम में राज्य भाजपा की विस्तारित कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने के लिए केरल जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद श्री नड्डा की ये पहली केरल यात्रा है। उन्होंने कहा कि हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने न केवल केरल में अपनी सीटों का खाता खोला बल्कि वोट प्रतिशत में भी इजाफा किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। गृह, कार्मिक और मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे प्रमुख विभाग उन्होंने अपने पास ही रखे हैं। इन विभागों के अलावा मुख्यमंत्री के पास वे विभाग भी हैं जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अलावा जल संसाधन विभाग भी आवंटित किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम को स्कूली शिक्षा और उत्पाद तथा मद्य निषेध विभाग सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर में कल जम्मू संभाग के कठुआ जिले में आतंकी हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत सेना के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और 5 घायल हो गए। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए बिलावर उप जिला अस्पताल ले जाया गया है। असम में बाढ़ में मरने वालों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। राज्य की बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है लेकिन 27 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDRF और SDRF की टीमों ने कल 218 लोगों को बचाया। ब्रह्मपुत्र, बराक और उसकी सभी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के कारण कल 127 सड़कों और 2 पुलों के अलावा अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। 53,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। मौसम विभाग ने मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ भागों में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और बुलढाणा जिलों के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए आज दोपहर 1 बजे तक अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिक KS होशलीकर ने बताया कि पुणे, सतारा, पालघर, सिंधुदुर्ग और ठाणे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज चेन्नई के MH चिदंबरम स्टेडियम में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम 2020 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उसने इसी मैदान पर पहला मैच 12 रन से जीता था जबकि दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस मैच को जीतकर श्रृंखला में बराबरी करने की कोशिश करेगी। चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में 13वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिड्स से हारकर विंबलडन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। एक अन्य मुकाबले में 7 बार के चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 15वीं वरीयता प्राप्त डेनिश खिलाड़ी होल्गर रून को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। शीर्ष वरीयता प्राप्त जन्निक सिनर, तीसरी वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज, 5वीं वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव और 12वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल पहले ही पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।